मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का प्रथम अध्याय, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का वर्णन है, जानने के उपायों का वर्णन है, प्रमाण नयों का वर्णन है और मिथ्या ज्ञान का भी वर्णन है। क्योंकि सम्यक ज्ञान को बताते बताते फिर उससे विपरीत जो है उसका भी चित्रण किया गया है। तो अभी अपन ने गत दिवस श्रुत ज्ञान का वर्णन पढ़ा था, 12 अंग और अंग बाह्य की 14 भेद। अब उसके आगे हैं व्याख्यातम परोक्षम। दो प्रकार के परोक्ष ज्ञान व्याख्यात हो चुके हैं, अर्थात उनका व्याख्यान पूर्ण हुआ। प्रत्यक्ष मिदानीम वक्तव्यम, अब प्रत्यक्ष का कथन करने योग्य है। तत् द्वेधा, उसके दो भेद हैं, देश प्रत्यक्षम सकल प्रत्यक्षम, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्षम अवधि मनः पर्याय ज्ञानी, देश प्रत्यक्ष जो है वो अवधि और मन परे ये दो ज्ञान है। सर्व प्रत्यक्षम केवलम, और सर्व प्रत्यक्ष अर्थात सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। यद्येवम इदमेव तावद् अवधि ज्ञानम त्रिप्रकारस्य प्रत्यक्षस्य आद्यम व्याक्रियताम इत्यत्रोच्यते, व्याक्रियताम इत्यत्रोच्यते। तो यदि ऐसी बात है तो तीन प्रकार के प्रत्यक्ष में जो पहला प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान है उसका व्याख्यान किया जाए। इसलिए आचार्य उमास्वामी यहां पर कहते हैं द्विविधो अवधि, अवधि ज्ञान दो प्रकार का, भव प्रत्यय क्षयोपिशम निमित्तश्चेति। भव प्रत्यय यानी जिसका प्रत्यय कारण भव है, उस भव में जाने पर होता ही है, तो वो भव उसका कारण हो जाता है। और दूसरा क्षयोपशम निमित्त, जिसमें विशेष क्षयोपशम की अपेक्षा होती है, उसके निमित्त से होने वाला क्षयोपशम निमित्तक होता है, तत्र भव प्रत्यय उच्यते। अब उन दो में से सबसे पहले भव प्रत्यय कहा जाता है। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकों को होता है, देव और नारकों के पास होता है। यानी उस भव में जाता है कोई भी जीव, चला जाए देव और नारक भव में, तो अवधि ज्ञान निश्चित होना है, वो भव प्रत्यय है। अब भव की परिभाषा क्या है, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं आयुर नाम कर्मोदय निमित्त आत्मनः पर्यायो भव। आयु नाम, आयु और नाम कर्म के उदय है, आयु और नाम कर्म का उदय है निमित्त, जिसमें ऐसी आत्मा की पर्याय को भव कहते हैं। उसमें आयु भी उदय आयु का उदय भी अपेक्षित है और नाम कर्म भी साथ में अपेक्षित है, शरीर नाम कर्म तो चाहिए ना। तो इनके उदय से जो पर्याय मिलती है उसको भव कहते हैं। प्रत्यय कारणम, प्रत्यय का अर्थ कारण होता है, निमित्तम निमित्त होता है, इत्यनर्थांतरम। यद्येवं तत्र क्षयोपशम निमित्तत्व न प्राप्नोति। अब कोई शंकाकार प्रश्न करते हैं कि अगर ऐसा कहोगे तो फिर वहां पर क्षयोपशम का निमित्तपना प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वहां बिना अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम की अवधि ज्ञान हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि भव प्रत्यय, उस भव में जाने के बाद अवधि ज्ञान होना ही होना है, तो फिर अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब आचार्य उत्तर देते हैं, नैष दोषम, ये जो तुम्हें दोष दिख रहा है ये ऐसा दोष नहीं है। क्यों? तदाश्रया तत्सिद्धेः, उस भव के आश्रय से उस क्षयोपशम की भी सिद्धि हो जाती है। यानी ये दो ऐसे भव है, देव और नारक, कि उस भव में जाते ही साथ क्षयोपशम भी अपने आप घटित हो जाता है अवधि ज्ञानावरण का। भवम प्रतीत्य क्षयोपशम संजायत इति कृत्वा भव प्रधान कारणम इत्युपदिश्यते। उस भव की अपेक्षा करके क्षयोपशम उत्पन्न हो जाता है, ऐसा करके भव को प्रधान कारण बतलाया। यथा पतत्रिणो गमनम आकाशे भव निमित्तम न शिक्षा गुण विशेष, जैसे पक्षियों का आकाश में उड़ना उस भव के निमित्त से होता है, उनको सिखाना नहीं पड़ता। तथा उसी तरह देव और नारकों के व्रत नियमाद्यभावेपि, व्रत और नियम आदि का अभाव होने पर भी जायत अवधि ज्ञान हो जाता है। इति इसलिए भव प्रत्यय इत्युच्यते, भव प्रत्यय इस प्रकार कहा जाता है। इतरथा ही, अन्यथा क्या होता, भव साधारण इति कृत्वा सर्वेषाम अविशेष स्यात्। देव और नारक कहना जरूरी था, नहीं तो फिर भव प्रत्यय का मतलब, भव तो चारों गतियों में होता है ना, तो यहां देव और नारकों की विवक्षा ले ली है। देव नारकाणाम इत्यविशेषाभिधाने पी, देव और नारक ऐसा सामान्य कथन होने पर भी सम्यक दृष्टिनाम एव ग्रहणम, यहां पर सम्यक दृष्टियों को ही ग्रहण करना है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किनको होता है, तो जो देव और नारक तो हैं लेकिन सम्यक दृष्टि भी है, उनको होता है। कुतः, ये कहां से अर्थ निकाला आपने, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं नीचे, तो आचार्य, कोई शंकाकार पूछ रहा है कि ये अर्थ कहां से निकाला आपने, तो आचार्य उत्तर देते हैं, अवधि ग्रहणात्। अवधि शब्द आया, तो अवधि शब्द को आचार्य उमा स्वामी ने ग्रहण किया है, तो इससे ये समझ में आ जाता है कि मिथ्या दृष्टिनांच विभंग इत्युच्यते। मिथ्या दृष्टियों के पास तो विभंग होता है, ये तो सम्यक दृष्टियों के पास अवधि ज्ञान होता है, इसलिए सम्यक दृष्टियों को ग्रहण करना है। प्रकर्षा प्रकर्ष वृत्तिश्च आगमतो विज्ञेया। अब इसमें अवधि ज्ञान में जो न्यूनाधुप कम ज्यादा जो अंतर होता है, किसी देव में कम अवधि, सबसे कम अवधि ज्ञान 25 योजन प्रमाण है, अब फिर अधिक कितना है, असंख्यात योजन प्रमाण है। तो ये न्यूनाधिकता रहती है, देवों में अलग अलग प्रकार के देव होते हैं तो उनमें ये कमी वेशी पाई जाती है, तो वो आगम से जान लेना, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। यदि भव प्रत्यो वधिर देव नारकाणा अथ क्षयोपशम हेतु केशाम इत्यताह। अब भव प्रत्यय अवधि ज्ञान अगर देव और नारकों के पास होता है, तो फिर क्षयोपशम निमित्त क्षयोपशम हेतुक जो अवधि ज्ञान होता है वो किनके होता है, इस तरह प्रश्न होने पर इसी कारण आचार्य कहते हैं क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। क्षयोपशम है निमित्त जिसमें ऐसा अवधि ज्ञान जिसके षड विकल्प है, छह भेद हैं। शेषाणाम मनुष्य तिरियंचों को ही होता है, क्योंकि अब देव और नारक हो गए तो बचे कौन? मनुष्य और तिरियंच। अब ये छह भेद कौन से हैं क्षयोपशम निमित्त तक अवधि ज्ञान के? तो बोलते हैं कि अनुगामी अननुगामी। अनुगामी का अर्थ होता है साथ में चलने वाला, अपने पीछे रहने वाला। यहां से अगर ऊपर भी चले गए देव गति में तो भी वह अवधि ज्ञान साथ में जाएगा, तो ऐसा साथ में चलने वाला अवधि ज्ञान अनुगामी होता है। और अननुगामी का अर्थ जो छूट जाता है, वर्धमान जो वृद्धि को प्राप्त होता है, हीयमान जो हानि को प्राप्त होता है। अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमान फिर अवस्थित, जो जितना उत्पन्न हुआ था उसमें न घटता है न बढ़ता है, ज्यों का त्यों रहता है अंत तक, वो अवस्थित अवधि ज्ञान है। और अनवस्थित का अर्थ होता है जिसमें उतार चढ़ाव रहते हैं, कम ज्यादा होते रहता है, वो अनवस्थित अवधि ज्ञान है। अब ये हानि वृद्धि कैसे होती है? तो बोले गुणों के कारण होती है। गुण घटेंगे तो अवधि ज्ञान कम हो जाएगा, गुण बढ़ेंगे तो अवधि ज्ञान बढ़ जाएगा, क्योंकि गुणों से क्षयोपशम बढ़ता है। एवं व्याख्यातम अवधि ज्ञान, इस तरह अवधि ज्ञान का व्याख्यान पूर्ण हुआ। तदनंतर इदानीं मन पर्याय ज्ञानम वक्तव्यम, उसके पश्चात अब मन परे ज्ञान बताने योग्य है। तस्य भेद पुरस्सरण लक्षण व्याचिक्षा सुराहा, अब मन परे ज्ञान के जो भेद हैं उन भेद पूर्वक उसके लक्षण की व्याख्या करने के इच्छुक आचार्य कहते हैं रुज विपुल मति मन पर्ययः। रुज मति और विपुल मति ये दो मन परे ज्ञान है। मति शब्द जो द्विवचन में आया ना, मति मति मतयः ऐसे रूप चलते हैं, तो ये द्विवचन का रूप है। ऋजुमति और विपुलमति, ऋजु विपुलमति। अब ऋजुमति का अर्थ होता है वाक्काय मनस्कृतार्थस्य परमनोगतस्य विज्ञानात्। किसी के मन में कोई वस्तु है उसका ज्ञान होने से ऋज्वी मतिर्यस्य सोयम ऋजुमति ही अनिर्वर्तिता कुटिलाच विपुलाच। और ये आगे का है, यहां पर ये बात पूरी होती है कि जिसकी मति सरल है, एकदम सीधे साधे विचार चल रहे हैं, तो फिर ये ऋजुमति मन पर ज्ञान उनके मन को जान लेगा। लेकिन आड़े टेढ़े विचार चल रहे हैं तो फिर उसको नहीं जान सकेगा, उसके लिए आचार्य कहते हैं अनिर्वर्तिता। जो भी पूरी तरह से निर्वर्तित नहीं है, जो मन में विचार आदि बने नहीं हैं, उनको भी जान सकता है विपुलमति। कुटिला च विपुला च, और अगर मति टेढ़ी जा रही है, कुटिल है, तो भी ऋजुमति विपुलमति जान लेगा। और विपुला च, और बहुत विस्तृत विषयों में भटक रही है मति, तो उन सब को जान लेगा। कस्माद अनिर्वर्तिता, जिसकी रचना नहीं हुई है, इसका क्या मतलब हुआ? किस कारण से रचना नहीं हुई है ऐसा कह रहे हो? तो आचार्य कहते हैं वाक्काय मनस्कृतार्थस्य, वचन काय और मन में किया गया है पदार्थ जहां पर, ऐसे परगीय मनो परकीय मनोगत से किसी के भी मन में कोई वस्तु है उसको विज्ञाना तो उसको जान लेने से ये विपुलमति कहलाते हैं। विपुला मतरियस सोयम विपुलमति, विपुल है मति जिसकी वह विपुलमति कहलाता है। ऋजुमतिश्च विपुलमतिश्च ऋजु विपुलमति द्वंद्व समास किया। चकार बहुलो द्वंद्व, जिसमें च च ज्यादा हो वो द्वंद्व समास होता है। एकस्य मति शब्दस्य कथार्थत्वाद प्रयोग, मति शब्द जो है उसका अर्थ अपन जानते हैं इसलिए यहां पर उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अथवा ऋजुश्च विपुलाच ऋजु विपुले, ऋजु विपुले मति ययोस्तौ ऋजु विपुल मति, जिनके पास सरल और कुटिल मति होती है उसमें क्रम से ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान होता है। सहेष मन पर्यायो द्विविधः, यह जो मन पर्याय ज्ञान है उसके दो भेद है, ऋजुमतिर विपुलमति इरिति। आह उक्तो भेद, अब कोई कहता है कि ठीक है आपने ये भेद समझा दिया हमें, लक्षणम इदानीं वक्तव्यम् इत्यत्र उच्यते, अब यहां पर आप उसका लक्षण भी तो बताओ, मन पर्याय ज्ञान क्या वस्तु है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं वीर्यांतराय मन पर्याय ज्ञानावरण क्षयोपशमांगोपांग नाम लाभावष्टम भाद आत्मन परकीय मन संबंधेन लब्ध वृत्ति रूपयोगो मन पर्याय। बोलते हैं कि नाम कर्म का उदय होने से, उसके उदय का लाभ होने से आत्मा को ये सारे पुद्गल और इस प्रकार के आकार प्राप्त होते हैं, पर आचार्य कहते हैं कि यहां पर नाम कर्म के लाभ के आलंबन से आत्मा के पास दूसरे के मन संबंधी एक उत्पन्न उपयोग उत्पन्न होता है, लब्ध वृत्ति उपयोग, एक ज्ञान जाता है दूसरे के मन को जानने में समर्थ एक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको मन पर्याय कहते हैं। मत ज्ञान प्रसंग इति चेत उक्तो उत्तरम पुरस्तात, अब ये तो मत ज्ञान हो जाएगा, तो आचार्य कहते हैं कि नहीं इसका उत्तर हम पहले बतला चुके हैं। मत ज्ञान इंद्रिय और मन के सहारे से जानता है, ये बिना सहारे के जानता है, तो इसको पहले बतला चुके हैं। अपेक्षा कारण मन इति, अपेक्षा भूत कारण मन है, इसलिए परकीय मनसि व्यवस्थितोर्थ अनेन ज्ञायते इत्येतावत् अत्र उपेक्ष्यते। मन केवल एक अपेक्षा भूत कारण है इसमें मन पर्याय में, परकीय मनसि व्यवस्थितोर्थ अनेन ज्ञायते, इस ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन में स्थित कोई पदार्थ जान लिया जाता है, इतना ही यहां पर अपेक्षित किया जाता है। तत्र अब मन पर्याय ज्ञान के जो भेद दो भेद हैं उनमें ऋजुमतिर मन पर्याय, ऋजुमति जो मन पर्याय ज्ञान है वह काल तो जगन्नीन है, जीवानाम आत्मनश्च द्वित्रीणी भवग्रहणानि उत्कर्षेण सप्ताष्टौ गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति। ऋजुमति मन परिज्ञान काल की अपेक्षा से जगन्य रूप में जीवादिक को और आत्मा को जानता है, और दो तीन भावों को जान लेता है, और अधिक से अधिक सात या आठ भावों को भी ऋजुमति जान लेता है। गत्या गत्यादि भी प्ररूपेति, वो जितने बीच बीच की गतियां हैं उन सब का भी प्ररूपण कर सकता है। क्षेत्र तो जगन्नीन, क्षेत्र की अपेक्षा से कम गव्योति पृथक्त्वम, तीन से नौ कोस तक अवधि ज्ञान कम से कम जानता है। उत्कर्षेण योजन पृथक्तस्याभ्यंतरम न बहिः, अधिक से अधिक एक योजन के अंदर अंदर तक का सब जान लेता है, एक योजन के बाहर का नहीं जानता। द्वितीय काल तो जगन्नेन सप्ताष्टौ भवग्रहणानि, अच्छा द्वितीय काल तो एक साथ छप गया, तो दूसरा जो मन परे ज्ञान है उसका नाम विपुलमति है। वह जगन्य से सात या आठ भावों को जानता है। ऋजुमति जगन्य से दो या तीन भावों को जान रहा था और उत्कृष्ट से इतना जान रहा था, तो विपुलमति उस ये जितना उत्कृष्ट से जान रहा है ऋजुमति, उसको जगन्य से जान लेता है। उत्कर्षेण असंख्येयानि, अधिक से अधिक असंख्यात जन्मों को वो गति और आदगति के साथ प्ररूपित करने में सक्षम होता है। क्षेत्र तो जगन्नी, अब क्षेत्र कम से कम कितने क्षेत्र तक जानता है, तो आचार्य कहते हैं क्षेत्र तो जगन्नी ने योजन पृथक्तमेकम, बस 9 किलोमीटर के भीतर भीतर जान सकते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं दिखता हमें। पर अपभ्रंश काव्य में कहीं पर ऐसा वर्णन आता है, अब असंख्यात भवों को जानने वाला जो अवधि ज्ञान है वो मुनिराजों को होगा, देशावधि ज्ञान से ऐसा बनेगा नहीं, पर वो परमावधि सर्वावधि ज्ञान में इतना हो सकता है। क्षेत्र तो जगन्नेन योजन पृथक्त्वम्, क्षेत्र की अपेक्षा से कम मन परे ज्ञान की बात कर रहे हैं। अवधि ज्ञान का कितना क्षेत्र था, कम से कम 25 योजन था और अधिकतम असंख्यात योजन था, और सर्वावधि ज्ञान का सर्वलोक था क्षेत्र। यहां पर मन परे ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि कम से कम 3 से 9 योजन तक जान लेता है मन परे ज्ञान। जितने जीव हैं जिनके पास मन है उनके मन को वो जान लेता है। उत्कर्षेण मानुषोत्तर शैलस्याभ्यंतरम न बहिः, अधिक से अधिक मानुषोत्तर पर्वत के भीतर भीतर का वो जान सकते हैं, उसके बाहर का नहीं। और ये तब होगा जब वो मेरु पर्वत पर विराजमान हो, सुमेरु पर्वत पर, क्योंकि वहां से ऐसे वो योजनों का हिसाब बनेगा। पूरा 45 लाख योजन का जो क्षेत्र है मनुष्य लोक, वो वहां से बनेगा। धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है कि अगर कोई विपुलमति मन परे ज्ञानी जिनको इतना विस्तृत ज्ञान है वो अगर मानुषोत्तर पर्वत पर खड़े हो जाए तो मानुषोत्तर पर्वत के उस पार तो नहीं जा सकते, लेकिन पर्वत तक तो जा ही सकते हैं। तो वहां खड़े हो जाए तो क्या होगा उनका ज्ञान, वो क्या उनका ज्ञान अंदर मनुष्य लोक को जानेगा और बाहर नहीं जानेगा? बाहर भी तो भोग भूमिया जीव हैं, तिर्यंश हैं, बाहर केवल तिर्यंश हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में ही मनुष्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो उसका उत्तर आचार्य महाराज देते हैं, देखो अपन इसको निकाल कर पढ़ते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको अपन शास्त्रों से खोल करके फिर निकाल कर उसको पढ़ते हैं। कालदो जहन्नम सत्तट्ठ भवक गहनाणे उक्कसेण असंख्येज्जाणे भवक गहनाणे। काल के अपेक्षा से ऋजु विपुलमति मनः परे ज्ञान सात या आठ भवों को जानता है, और उक्कसेण अधिकतम असंख्येज्जाणे भवक गहनाणे, असंख्यात भवों तक के क्या क्या विचार किया है किसने, सब वो जान सकते हैं। अब वो प्रश्न था खेतेण जहन्नम जोयेण पुदत्तम, क्षेत्र की अपेक्षा से जगन्य जो है योजन पृथक्त्व क्षेत्र है। पृथक्त्व का अर्थ तीन से ज्यादा और नौ से कम, उसको पृथक्त्व कहते हैं। नच उजु विउल मदि उक्कस जहन खेताणम समानत्तम, ऋजुमति और विपुलमति के उत्कृष्ट और जघन्य क्षेत्रों के बीच समानता नहीं है। ज्वेण पुदत्तम में अनेक भेद अंशनादो, योजन पृथक्त में अनेक भेद देखे जाते हैं। उक्कसेण मानुषोत्तर सेलस अभ्यंतर दो न बहिद्धा, उत्कृष्ट से मानुषोत्तर पर्वत के भीतर भीतर का क्षेत्र मन परे ज्ञान का क्षेत्र होता है, नो बहिद्धा बाहर का क्षेत्र नहीं होता। पणदालीस जोयण लख घन पदरम जाना दे, 45 लाख योजन के घन प्रतर को वो जान लेते हैं। घन प्रतर का मतलब उसका विस्तार और फिर उसका पूरा घन यानी हाइट लेंथ और ब्रेड्थ तीनों मिला लो तो घन कहलाता है, तो सबको जान लेते हैं। उत्तम होती ऐसा कहा जाता है। एगागास सेड़िये चेव जान दित्ति चे इत के भी भवनति, आकाश की एक श्रेणी मात्र को जानते हैं ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तन न घट दे वो बात घट नहीं सकती। देव मनुष्य विज्जाहराईसु तस् नानस अपौत्ति प्रसंगादो, तो फिर देव मनुष्य और विद्याधर आदिकों में उस ज्ञान की प्रवृत्ति न होने का प्रसंग आ जाता है। अगर एक श्रेणी को जानेंगे तो फिर बाकी वो सब चीजें छूट जाएंगी। और मानुषोत्तर सेलस अभ्यंतर दो चेव जान आदि, अभ्यंतरम चेव जान दिन वो बहिद्धा, फिर एक बात कही है कि मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर तक के क्षेत्र में मन परे ज्ञान काम करता है बाहर नहीं। वग्गण सूत्रेण निर्दिष्टतादो, ये वर्गणा सूत्र में निर्दिष्ट सूत्र है, तो उससे मानुष के तभ्यंतर ठिद सब मुत्ति दब्माण जान दी नो बहिराणी बाहिराणी ति के भी भणंती। उस एक सूत्र के आधार पर कुछ आचार्य कहते हैं कि मानुषोत्तर पर्वत से बाहर, मान लो साधु यहां मानुषोत्तर पर्वत पर खड़े हुए हैं और उनसे बाहर जो भोग भूमि है वहां के कोई तिरंच उनके बाजू में आकर खड़े हो जाए, ये तो वहां जा नहीं सकते। तो अगर वो इतने निकट हो तो भी कुछ मत एक कुछ आचार्यों के मतानुसार वो उनके मन को नहीं जान सकते मन परे ज्ञानी, क्योंकि मन परे ज्ञान जो होता है मनुष्य लोक में ही काम करता है। आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं तन न घट दे, वो बात घटित नहीं हो सकती कि कोई प्राणी एकदम पास में हो और वो इतने महान ऋषि उसके मन को न जान सके, ये बात नहीं बन सकती। आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे हैं क्यों नहीं बन सकती, तो बोलते कि मनुष्योत्तर सेल समीवे ठाई हूण बाहिर दिशाए कयोवयोगस नाना अनुपत्ति प्रसंगादो, कोई मुनि मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर खड़े होकर के अपना ज्ञान बाहर लगाना चाहेंगे तो फिर वो ज्ञान लगेगा नहीं, ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी अगर आप ये मानोगे तो। हो दूचे, कोई कह रहा है कि होने दो, अंदर का तो जान ही रहे सब पूरे, बाहर का नहीं जानेंगे। तो आचार्य कहते हैं तण तरण उत्पत्ति ए कारणा भावागु, बोले कि बाहर ज्ञान काम न करे, न करने में कोई कारण ही नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है उन ऋषि में कि जिसके कारण उनका ज्ञान इस दीवार के बाहर काम न करता हो, कोई ऐसा कारण नहीं है। उनके ज्ञान आवरण का इतना क्षय उपशम है कि वो जान सकते हैं। नताव खो समाभावादो, बोले कि आप कहोगे कि क्षयोपशम का अभाव है तो बोल ही नहीं सकते, क्षयोपशम का अभाव तो आप कह ही नहीं सकते। अभ्यंतर दिशा विषय नाणुपत्ति अन्नहाण्डुवत्ति दो कहो समस् अत्यत सिद्धि है, बोलते हैं कि अगर अंदर का जान रहे हैं तो फिर क्षयोपशम तो मानना ही पड़ेगा। अंदर 45 लाख योजन जान रहे और बाहर एक हाथ या एक वितस्ते का प्रमाण भी नहीं जाने तो ये तो बात बनेगी नहीं। जब इतने योजनों का क्षयोपशम है उनके पास तो फिर बाहर का जानने में क्या आपत्ति है। न मानुसूत्र सेलेण अंतरिदत्तादो पर भागठिदत्थेसु नाणानुपत्ति, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पहाड़ बीच में आ जाता है इसलिए उसके उस पार तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता। शंका समझ में आ रही है? तो बीच में पर्वत आ गया इसलिए उस तरफ का जान नहीं सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं कह सकते? तो आचार्य कहते हैं अनिंद्यस पच्चखस तीदा नागय पज्जा येसु वि असंख्य जेसु वावरंतस अभ्यंतर दिशाए पव्वदादि ही अंतरदत्थे वि जानंतस मणपज्जव नाणिस मानुसुत्तर सेलेन परिघाणानुवत्ति दो। क्या सुंदर बात लिखी है आचार्य कहते हैं कि वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है, अतीत अनागत और वर्तमान पर्यायों को जानने में समर्थ है, असंख्यात पर्यायों में वो ज्ञान चला जाता है और वावरंतस उसमें व्यापृत होता हुआ अभ्यंतर दिशाए पव्वदादि ही अंतरिदत्थे भी जानंतस, और मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर की जो दिशाएं हैं वहां पर पहाड़ों को पार करके भी जान लेता है और अनेक पर्वतों के पार की वस्तु को भी जान लेता है। तो यहां एक पहाड़ उसको रोक सकता है क्या उस ज्ञान को? एक पर्वत मानुषोत्तर पर्वत उस ज्ञान को नहीं रोक सकता। तो इसलिए मानुषोत्तर पर्वत से उस ज्ञान में अवरोध नहीं आता। तदो, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? मानुषोत्तर सेल भंतर वैणम न खेतनियामयम। बहुत सुंदर समाधान दे रहे हैं कि मानुषोत्तर पर्वत तक का ज्ञान जो बताया है वो मानुषोत्तर नाम के पर्वत के भीतर के क्षेत्र को बांधने वाला शब्द कथन नहीं है, बल्कि किंतु मानुषोत्तर सेल भंतर पणदालीस जोयण लख नियामयम। मानुषोत्तर पर्वत के अंदर का स्थान कितना बड़ा है? 45 लाख योजन। तो मन परे ज्ञान जो होता है वो 45 लाख योजन प्रमाण जान सकता है। तो व्यूलमदि मणपज्जय नाण जोय सहित खेतम घणागारेण ठही दे पणदालीस लखमेतम चेव हो दित्ती। तो अगर मानुषोत्तर पहाड़ के ऊपर वो खड़े हो जाएंगे तो वहां से 45 लाख योजन पूरा चारों घेरा बनेगा उनका। वो बीच में है तो ऐसे मध्य में स्थित होकर के ऐसा व्यास बनेगा उसका, 45 लाख योजन का ऐसा घेरा बनेगा। तो इधर मेरु पर्वत को छुएगा और इधर बाहर का जो क्षेत्र है उसको छुएगा। तो मानुषोत्तर पर्वत तक के ही जानता है ऐसा अर्थ नहीं लेना, 45 लाख योजन जानता है ऐसा अर्थ लेना। अथवा उपदेशन लद्धुण वत्तव्यम, अंत में आचार्य महाराज कहते हैं कि अब कुछ आचार्यों ने तो कहा है कि मानुषोत्तर के बाहर नहीं जानता, और यहां पर हमने कहा है कि वो 45 लाख योजन कहीं से भी जान लेता है। तो अभी अपन कलिकाल में बैठे हुए हैं, केवली भी नहीं है, श्रुत केवली भी नहीं है, अगर कहीं से मिल जाए केवली श्रुत केवली तो उनसे उपदेश प्राप्त करके निर्णय कर लेना। देखो इतना समझाने के बाद भी वो निर्णय नहीं दे रहे, जबकि इतना समझाने के बाद सबको समझ में तो आ गया कि एकदम 45 लाख योजन वाली बात सही बैठ रही है, और वो जो दूसरे आचार्य वो कह रहे हैं कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जानता, अंदर के पूरे ढाई द्वीप जितना क्षेत्र 45 लाख योजन का जानता है। तो आचार्य महाराज अंत में कहते हैं कि भाई हमने जितना समझाया वो अपनी जगह है, पर उपदेशन लद्धुण वत्तवम, आगम प्राप्त करके ही कथन करना। इस तरह मनः परे ज्ञान का विवरण संपन्न हुआ। तो ऋजु और विपुल मते मनः परे ज्ञान दो भेद हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, कम ज्यादा का अंतर है या और भी कोई अंतर है? तो आचार्य कहते हैं विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, उन दोनों में विशेष अर्थात अंतर विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपात की अपेक्षा से, पतन न होने की अपेक्षा, एक का पतन हो सकता है दूसरे का नहीं होता, ये भी अंतर है। तदावरण क्षयोपशमे सति आत्मनः प्रसादो विशुद्धि, उस संबंधी आवरण का क्षयोपशम होने पर आत्मा में जो निर्मलता आती है उसका नाम विशुद्धि है। प्रतिपतनम प्रतिपात, गिरने का नाम प्रतिपात है, न प्रतिपात अप्रतिपात, न गिरने को अप्रतिपात कहते हैं। तो उपशांत कषायस्य, ग्यारहवें गुणस्थान वर्ती कोई साधु हैं उनके चारित्र मोह उद्रेकात्, चारित्र मोह का उद्रेक होने से प्रच्युत संयम शिखर से प्रतिपातो भवति, वो यथाख्यात संयम जो शिखर है, संयम का शिखर है, वहां से पतन हो जाता है, नीचे आ जाते हैं, ग्यारहवें गुणस्थान से वापस नीचे आना पड़ता है। क्षीण कषायस्य प्रतिपात कारणाभावाद अप्रतिपात, तो उपशांत कषाय में प्रतिपात होता है और क्षीण कषाय जिनकी कषाय बिल्कुल नष्ट हो गई है तो अब उनको नीचे गिरने का सवाल ही नहीं है, तो इसलिए उनके अप्रतिपात होता है। विशुद्धिश्च अप्रतिपातश्च विशुद्ध प्रतिपातौ ताभ्याम विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तयोर विशेषस तद विशेष, दोनों में अंतर है। तत्र विशुद्ध्या तावत, अब समझाते हैं कि विशुद्धि की अपेक्षा से दोनों में क्या अंतर है। तो ऋजु मतेर विपुल मतेर द्रव्य क्षेत्र काल भावैर विशुद्धतर, ऋजुमति की तुलना में विपुल मति जो होता है वह द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चारों अपेक्षाओं से अधिक निर्मल होता है। कथम यह, ऐसा कैसे? तो बोले यह कार्मण द्रव्यानंत भागोन्त्य सर्वावधिना ज्ञातस तस्य पुनरनंत भागीकृतस्यात्, तस्य पुनरनंत भागीकृतस्यान्त्यो भागः ऋजुमतेर्विषयः, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जो सर्वावधि ज्ञान, सबसे बड़ा अवधि ज्ञान जो होता है उसने कार्मण द्रव्य के अनंतवे भाग को जान लिया। एक कार्मण वर्गणा होती है ना, उसको कार्मण द्रव्य कहते हैं, तो कार्मण वर्गणा के अनंतवे भाग का मतलब होता है कि बहुत बारीक स्कंद होगा, वो बहुत छोटा सा पुद्गल स्कंद होगा, उसको सर्वावधि ज्ञान ने पकड़ लिया। तो सर्वाधिक ज्ञान द्वारा जाना हुआ जो कारमण द्रव्य का अनंत वा भाग है, तस्य पुनरअनंत भागी कृतस्य, उसके भी फिर अनंत भाग अगर कर लिए जाए, कैसे करेंगे? तो कोई श्रुतज्ञानी मुनिराज उनके अविभागी प्रतिच्छेदों का ध्यान करते हुए उसके भी अनंत भाग कर सकते हैं। उनके पास सर्वद्वैत ज्ञान भी है और श्रुतज्ञान भी है। तो जब वो श्रुतज्ञान में जाकर के ध्यान करेंगे तो सर्वावधिक ज्ञान से जाना हुआ जो विषय था उसके भी अनंत हिस्से कर सकते हैं वो, शक्त्यंश की अपेक्षा। तो अंत्यो भाग ऋजुमतेर विषय, तो उसमें जो अंतिम एक अविभाग प्रतिच्छेद है उसको ऋजुमति ज्ञान पकड़ लेता है। तो अब देखो सोचने की बात है कि अवधि ज्ञान बड़ा है या ऋजुमति ज्ञान बड़ा है। अवधि ज्ञान ने सर्वलोक को जान लिया और कार्मण वर्गणा के भी छोटे से स्कंद को जान लिया। एक कार्मण वर्गणा का जो स्कंद होता है उसके अनंत भाग कर लो तो उसमें से एक भाग को सर्वावधि ज्ञान जान लेता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ऋजुमति ज्ञान उस स्कंद के भी अनंत भाग कर दो तो उसमें से एक भाग को वो जान लेता है, ऋजुमति। तो कौन सा ज्ञान अधिक सशक्त हुआ? जो बारीक से भी बारीक को जान ले वो ज्ञान विशेष शक्ति संपन्न हुआ। तस्य ऋजुमति विषयस्य अनंत भागी कृतस्य अंत्यो भागो विपुलमतेर विषयः। अब ऋजुमति ने जो जाना है उसके फिर अनंत भाग कर डालो तो उसमें से जो एक हिस्सा है उसको विपुलमति ज्ञान जान लेते हैं। अनंतस्य अनंत भेदत्वात्। अब आप पूछोगे कि अनंत का अनंत 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 कितना करोगे? तो आचार्य कहते हैं कि अनंत के अनंत भेद होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल तो विशुद्धि ही उक्ता। द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा विशुद्धि बता चुके हैं। भाव तो विशुद्धि, भाव की अपेक्षा से जो विशुद्धि है वो कैसी है? तो सूक्ष्म तरत द्रव्य विषयत्वादेव वेदितव्या। वो बारीक से बारीक द्रव्य को विषय कर लेने के कारण उसकी भाव संबंधी विशुद्धि अधिक जान लेना। प्रकृष्ट क्षयोपशम विशुद्धि योगात, क्योंकि उत्कृष्ट क्षयोपशम की विशुद्धि का उनके पास योग होता है। अप्रतिपातेनापि विपुलमतिर विशिष्टः। अप्रतिपात की अपेक्षा भी विपुलमति ज्ञान उससे भिन्न होता है, ऋजुमति से विशेष होता है। कैसे? तो आचार्य कहते हैं स्वामिनाम प्रवर्धमान चारित्रोदयत्वात्। ऋजुमति का तो प्रतिपात देखा जाता है, यानी ऊपर के गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में ऋजुमति ज्ञान के साथ आ सकते हैं। लेकिन विपुलमति ज्ञान के लिए लिखा है कि उनके जो विपुलमति ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं जो ऋषि, विपुलमति ज्ञान के जो स्वामी होते हैं, वे प्रवर्धमान चारित्र उदयत्वात्। उनका चारित्र वर्धमान चारित्र होता है, बढ़ता ही रहता है। तो फिर नीचे आने का प्रश्न ही नहीं है। अब जो शिखर जी के ऊपर चढ़ रहा है तो वो तो ऊपर ही जाएगा ना। ऋजुमत है पुनः प्रतिपाती, और ऋजुमति प्रतिपाती है। स्वामी नाम कषाय उद्रेकाधी यमान चारित्र उदयत्वात्। जो ऋजुमति के स्वामी है उनको कषाय के उद्रेक से चारित्र की हानि हो जाती है। ग्यारहवें गुणस्थान में थे, यथाख्यात चारित्र था, दसवें में आ गए, सूक्ष्म संप्राय हो गया। फिर नौवें में आ गए, सामायिक छेदोपस्थापना हो गया, और उसके बाद और नीचे आ गए। तो चारित्र नीचे आ सकता है उनका, ऋजुमति का। तो ये दोनों में अंतर है। इसके बाद अवधि और मन परिज्ञान में क्या अंतर है उसकी चर्चा आगामी सूत्र में करेंगे। जैनम जयतु शासनम।